Hello and welcome to Days of Our Lives, Mint's audio history series on liberalization and the ordinary man. Here, you will hear stories of how life changed for most people, be it the sunshine boy or the CEO following the reforms of 1991 in their voices.
Last you heard William Bissell talk about reforms and the growth of India's most famous ethnic retail brand, Fab India. Today we bring you another story from the retail segment, but this time from small town India.
हमारे shop के phones पे भी threats आई नहीं है कि आप store बंद क्यों नहीं कर रहे हो, बंद करो. Like हमने अपने store हमने खरीद भी लिया है that time, पर हमने इसको बनाया नहीं कि कोई भी थोड़ा सा भी show off करता था साथ ही में extortions वाली problem शुरू हो जाती थी. और हमारा golden temple बहुत पास में है और जो गोल्डन टेम्पल में जो लोग रहते थे उनके लिए उनको हमेशा अच्छे से अच्छे कपड़े चाहिए होते थे. रेमन भिंडरावाला जी वाज अ रेमन कस्टमर. ही नेवर केम हियर बट उनके लोग उनके लिए लेके जाते थे. ही ऑलवेज वेयर टू ब्लैक क्लोथ्स. वो माय स्टोर से उनके लिए
कपड़ा. इट वाज मार्क ट्वेन हु सेड क्लोथ्स मेक द मैन. सार्टोरियल एक्सेसेस वर नॉट अ लग्जरी इंडिया कुड अफोर्ड टिल इवन द मिड 90s. द ऑस्टेरिटी ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इयर्स along with the lack of resources meant that clothes, while essential, were not the way of life that they are today. There weren't five different jean styles competing for your attention, while the formal shirts hung out in a corner completely separate from your casuals. Of course, there were a few staples, the white kurta, the gorgeous Banarasi sari, perhaps a smuggled Levi's if you were lucky enough, and of course, the suit from Raymond's. For when it came to suits, India only trusted one brand, and that was Raymond's.
The complete man.
A company started in 1916 by the JK Group. Sure, there were the Vimals, the OCMs, the Mayur suitings, but Raymond was in a league of its own. Today, we bring you the story of Yadavendra Mehra, whose family has been associated with the brand since they started Amritsar's first Raymond shop, an official retailer of textiles and fabrics for the brand.
My name is Yadavendra Mehra. I'm 48 years old. और अपने ज़्यादातर एडल्ट ईयर्स मैंने अपने स्टोर्स में बिताए. हमारे रेमन के स्टोर्स हैं. अभी दो रेमन के स्टोर्स हैं और एक मान्यवर का स्टोर है. दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेमन स्टोर. ये अप्रोक्सीमेटली 40 ईयर्स पुराना स्टोर.
कहाँ पे लोकेटेड है
ये? अमृतसर के हाथ में है. वॉल सिटी का जो मेन एरिया पड़ता है जिसका नाम लोग पहचानते हैं कटर जैमल सिंह के नाम से जानते हैं. फैब्रिक्स के लिए मेन एरिया है ये. दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट ब्रांडेड स्टोर. मतलब रेमंड का, रेमंड के भी बहुत पहले के जो 8-10 स्टोर्स होंगे उसमें से.
The store was started by Mehra's father in times of acute financial distress, but by the time Yadavendra started coming, still in school, the business had stabilized.
मतलब basically 80s में आपने यहाँ आना शुरू
किया. मैंने हाँ.
June 5th, 1984, a day that was going to change the course of history. It would usher Punjab into the throes of a violent insurgency that would last the better part of 6 years. It was also the day that set into motion the events that would culminate in the bloody assassination of Prime Minister Indira Gandhi on 31st October of that year by the very men who had been deputed to protect her. This was the day Operation Blue Star, a military operation launched to eliminate Jarnail Singh Bhindranwale and his supporters who were holed up in Amritsar's Golden Temple, one of the holiest shrines of Sikhism, was launched. Before Blue Star would end, tanks would roll through the narrow alleys of Amritsar's walled city. Lives would be lost in huge numbers and Akal Takht, believed to be one of the 5 seats of power of Sikhism situated in the Golden Temple complex, would be partly destroyed. Mehra was there the day it all began. Movies and books will have you believe that our intuition tells us when something big is about to take place. But real life is often less glamorous and impressive. Mehra did not even realize for some time that firing had started. Living with conflict, for those of us who have been lucky enough never to experience it, is unimaginable. But Mehra, during his interaction with us, revealed that the human mind is capable of great wonders, including adaptation.
Well, I was younger that time, 84, jab yahan Operation Blue Star hua. And us time, hamari shop open thi, aur ekdam se awaazein aani shuru ho gayin.
Aap store mein the?
I was there. Radha, mujhe yaad hai, tab hamari shop exterior paint ho raha tha, toh hamare painters sab bhaag gaye the. Phir jo log thoda aur paas the, होल्डन टेम्पल की विसिनिटी में उन्होंने देखा वहाँ पे आग वाग भी लग रही है और वहाँ पे लोग भी मर रहे हैं.
एंड
थोड़ी देर बाद फिर एक दो घंटों के बाद लगा कि ज्यादा स्केल पे काम शुरू हो गया, तो फिर सारे मार्केट्स बंद हो गई. फिर सात आठ दिन तक अमृतसर टोटली बंद रहा था. काफी ज्यादा कर्फ्यू स्ट्रांग था. और इवन देन मुझे याद है कि हम लोग एक दो घंटे के लिए शॉप खोलते थे, उसमें भी सेल ठीक हो जाती थी. बट इवन थ्रू एक्सट्रीमिज्म और सब के प्रॉब्लम के अलावा भी 20% ग्रोथ एवरी ईयर हम लोग तब देख रहे थे
अपने बिजनेस में.
हाँ, अपने बिजनेस में.
Throughout the 70s and the 80s, clothes were but a necessity, even the fancy ones. Today, we see a resurgence of Indian ethnic wear when it comes to formals and weddings. But there was a time when the average Indian man preferred only the suit. And he wasn't exactly spoiled for choice. Sure, there were a few brands in the market, but we were both limited by range and also our own preferences. Mehra recalls how brown was India's favorite color. He also tells us just how much times have changed. Kuch naya dikhaiye, a statement shopkeepers are quite used to hearing over and over again, was not something that was uttered very often in the Raymond store. Today, it is only about new things and more options. Choice, according to Mehra, has been the biggest boom of reforms for consumers of today.
Us time pe kya kya aap log retail karte the?
Sab kuch.
Acha, kya bataye?
Inke fabrics hote the, suitings ke aur shirting fabrics hote the, blankets hoti thi. और साथ में इनकी अब जो नहीं आती वूल होती थी जिससे स्वेटर्स बनते थे, निटिंग यार्न.
एंड उस वक्त मार्केट में और क्या-क्या ब्रांड्स अवेलेबल थे?
ओसियम वाज वेरी स्ट्रांग एट दैट टाइम. एस्मा, शेल का, सो मेनी नेम्स. अब वो बहुत नाम खत्म हो गए हैं. मैंने देखा
क्यों खत्म, कुछ आईडिया?
हां, बट वो ही रहा कि वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाए.
फॉर्मल क्लोथिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता था इंडियंस के लिए 80s में?
हां, शादी में दे वर ऑलवेज वेयरिंग वेस्टर्न थिंग्स, वेस्टर्न सूट्स. अभी तो इंडियन एथनिक्स आर इन अ बिग वे. रेमंड वाज अ मस्ट. उसमें ये नहीं होता था कि कुछ नई चीज दिखाओ. उसमें कुछ बहुत ज्यादा डिजाइंस नहीं आते थे, चॉइसेस कम होती थी, बट फिर भी बल्क में बिकता था. अभी अब चॉइसेस बहुत बढ़ चुके हैं.
अब
चॉइसेस अभी आपके हमारे कस्टमर्स आते हैं, उनके पास स्मार्टफोन्स होते हैं और उस पर उनके वो दिखा देते हैं कि हमको ऐसा सूट चाहिए, ऐसा कलर चाहिए या ऐसा चाहिए, ये लुक चाहिए. तो हम उसकी हेल्प कर सकते हैं उसमें. पहले लोगों की इतनी चॉइस, इतनी अलग अलग नहीं होती थी. अब बहुत ज्यादा वाइड हो गया स्पेक्ट्रम. पहले सब एक जैसे कपड़े पहनते थे.
पहले मतलब जैसे कलर्स में ही बता दीजिए मुझे, पहले किस तरह के दो तीन ही कलर होते थे?
अरे मैं, मुझे याद है जब मैंने ज्वाइन किया था, सबसे ज्यादा ब्राउन्स बिकते थे. एक एक डिजाइन के हम लोग 20-20 यूनिट्स मंगाते थे. और 20 यूनिट मतलब 7-8 सूट. तो 7-8 सूट एक यूनिट में, तो आप कह रहे हो कि अगर अमृतसर में हम एक ही डिजाइन का, एक ही कलर, एक ही लॉट के हम 100 सूट भी बेचते थे तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी. और वो शादियों पे मिलते भी थे तो किसी के एक जैसे भी हो जाए तो वो कोई कह के मैंने भी मान ली. अभी तो ये है कि एक जैसा पहन लो तो अगले का तो मूड ही खराब हो जाए.
अभी कौन सा कलर सबसे ज्यादा बिकता?
अभी देयर आर मोर, पिछले मैं कुछ सालों से बोल रहा हूँ, ब्राइटर कलर्स. तो अब नीचे हमारे शेल्फ्स में देखिए, आपको रेड एंड ग्रीन्स और बहुत ब्राइट ब्राइट कलर्स दिख जाएंगे. पहले अब वो किसी ना किसी तरीके से आ रहे हैं, लाइक जैकेट्स आ रही है. अब ब्राउन सबसे कम बिकने वाले कलर्स में से.
Of course, Mehra knew what reforms meant, but did he anticipate the changes? Not really. At that time for him, the economic reforms simply translated into billing becoming computerized. Sure, the tools of business evolved. Orders that were earlier placed in person were now done over phone calls and emails. Stores that would earlier attract people from a certain socio-economic setup now started seeing a more varied clientele. Economic stability and greater spending power meant that now people had the time, the energy, and more importantly, the resources to spend on looking good. And the ripple effect was felt everywhere.
जैसे economic liberalization हुआ था, reforms हुए थे, तो आपको idea था उसके बारे में?
बिल्कुल, मैं तभी नया shop पे join किया था. और I was the first, I think our shop was the first shop, मतलब जहाँ पे हम लोगों ने मेरे आने के साथ ही computers खरीद लिए. और मुझको याद है क्योंकि I was young and मैं computer पे सब तो फीड करना होता, डाटा मैं ही डालता था.
तो उससे आपके रिटेल पे कुछ फर्क पड़ा पॉलिसीज वगैरह से? आपके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या कुछ ऐसा हुआ?
बिजनेस बेसिकली टाइम के साथ चेंज नहीं होता. बिजनेस के तरीके, उसके टूल्स बदलते हैं बट बिजनेस नहीं बदलता. टूल्स बदलते हैं, पहले हम हाथ से बिलिंग होती थी, अब कंप्यूटर पे होती है. पहले ऑर्डरिंग खुद जाके होती थी या चीज देख के होती थी, अब हमारी चीज बिक गई, हम टेलीफोन पे या इंटरनेट पे भी ऑर्डर कर देते हैं. ऐसी चीज अब इजी हो गया है, बट फिर भी ये टूल्स बदले.
अभी कैसे, मतलब आपका जो कस्टमर प्रोफाइल है वो क्या है?
पुअरेस्ट से लेकर रिचेस्ट सारे हमारे स्टोर्स का.
एंड ये शुरू से ही ऐसा था या पहले सिर्फ एक सर्टेन क्लास के लोग लेते?
पहले सर्टेन क्लास के लोग, पहले मासेस नहीं थे, क्लासेस आ रहे थे.
तो ये मासेस, ये कब से चेंज होना देखा आपने शुरू? स्पेंडिंग पावर, ब्रांड वैल्यू, एस्पिरेशन,
आप कह लो, पर 20 साल से फर्क आ रहा है. नाउ यू रियली डोंट नो. आपके कस्टमर देखने में लगते हैं कि दे आर वेरी सिंपल, वेरी लगता है कि बहुत ही लोअर स्ट्रेटा से आए हैं, बट दे आर स्पेंडिंग.
एंड आपकी पर्सनल लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए? मतलब
अभी हमारे घर में बहुत बड़ी बात होती थी कि कोई अब्रॉड जाता था, अब हर साल सब लोग वेकेशन के लिए अब्रॉड गए होते हैं. तो रिफॉर्म्स का फायदा तो हुआ ही है, इसमें तो कोई फायदा मान लो, बट ऑफकोर्स एवरीबडी इज अर्निंग मोर. और हमारे स्टाफ जैसे पहले उनके घर भी कुछ खास नहीं होते थे, साइकिल्स पे आते थे, और बट अब उनके अपने घर हैं, उनके घर में जो चीज़ें हमारे घर में है थोड़ी सी कम स्केल पे उनके घर में भी हैं.
Development in India today is characterized by expansion of roads, flyovers and metro construction, apart from the ever-increasing cars and high-rises. Amritsar is no different. The city that was once a great trading hub and boasted of a huge number of wholesale markets is a combination of dug-up sidewalls, choked alleys, unpaved roads, garbage heaps and incessant honking. Perhaps the only oasis of calm are the Golden Temple Complex and the Guru Nanak Dev University campus. Mehra here bemoans the progress that reforms have introduced. Sure, there is greater spending power, but is anyone really happy?
Amritsar kitna change hua?
Amritsar abhi se pehle 50 saal pehle India ke acche shaharon mein aata tha, shayad ab nahi aata hoga. Ab dekhiye Amritsar ki roads itni inhone abhi piche todi hui hai, abroad kar rahe hain sare. 100 years se bhi purane trees honge, jo purane avenues hongi wo sab trees nikal gaye. और ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो रहा है, मैं कहूँगा कि ट्रैफिक इज नॉट अ हैप्पी ट्रैफिक. अब देखिए ना, OCM अमृतसर में है और सबसे पुरानी कंपनीज में से, बट ऐसे आप समझिए OCM के लेवल से थोड़ी सी नीचे के, उसमें कई इंडस्ट्रीज अमृतसर में थी, उनका नाम इंडिया में था, काफी ट्रेडिंग का हब था.
व्हाट वुड बी योर नेक्स्ट लेवल ऑफ एस्पिरेशन? अब आप क्या चाहेंगे कि नेक्स्ट आपको क्या मिले?
मेरे बच्चों की एजुकेशन बेटर होनी चाहिए, एंड मैं उनको यही बताऊंगा कि सी, फाइनेंशियली यू शुड बी स्ट्रांग एंड स्टेबल, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट हैप्पीनेस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट.
The apparel sector has been one of the biggest beneficiaries of the economic reforms of 1991 as FDI was allowed and multiple brands gained entry into the market. Online retail has made the market even more competitive. Raymond has diversified into other brands, but their calling card still remains their suiting fabrics. Mehra admits that yes, new brands, malls and online portals are a competition, but remains sanguine about it. Formals and tradition are two things that don't go out of style, and his brand, he feels, represents both. This interview was conducted by Nikita Doval, and this broadcast was produced by Anik Biswas.